का नाम है अनंतेश्वर मंदिर। अनंतेश्वर मंदिर का मतलब है भगवान अनंत का, जो आप सबके ईश्वर हैं, शेषनाग है ना। तो ये जो अनंतेश्वर मंदिर है, ये परशुराम जी ने, एक राजा थे, राजा राम भोज, उनको यहाँ पर रक्षा करने के लिए, कि यहाँ पर इस स्थान की रक्षा हो, राजा राम भोज ने उडुपी में यहाँ पर अनंतेश्वर भगवान की स्थापना कराई। क्यों करवाई? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने राजा काल के दौरान क्या किया कि इस पवित्र स्थान की शुद्धि करी गई पहले। तो जब शुद्धि हो रही थी, क्लीनिंग हो रही थी, तो यहाँ पर एक सांप मर गया हल से कट करके। तो जब हल से कट के मर गया तो सब घबरा गए। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर चांदी की एक गद्दी स्थापित करी, सिल्वर यहाँ पर थ्रोन लगाया गया, चांदी की गद्दी थी। तो फिर चांदी की गद्दी धीरे धीरे समय काल के अंदर चांदी की गद्दी अंदर चली गई, अनंत शेष के लिए जो बनाई गई थी। और फिर बाद में वहाँ से एक शिवलिंग प्रकट हुआ कई वर्षों बाद। तो फिर उसको कहा जाने लगा अनंतेश्वर मंदिर, जो कि अनंत जिनके ईश्वर हैं। किसके हैं अनंत ईश्वर? शिव जी के हैं, इसलिए शिवलिंग भी है यहाँ पर। लेकिन प्राचीन स्थिति में ये रजत क्षेत्र था, चांदी की गद्दी लगाई गई, पदक होता है ना रजत पदक, सिल्वर मेडल, तो रजत बोलते हैं ना उसको, स्वर्ण रजत होता है और कान से, तो रजत पदक जो था वो लगाया गया। तो ये नीचे चला गया कुछ समय प्राचीन काल में, और फिर बाद में यहाँ पर शिवलिंग निकल आया। तो यहाँ पर शिव जी की पूजा होती है। ये इसलिए हमारे लिए मुख्य अनंतेश्वर मंदिर, क्योंकि जब उडुपी कृष्ण मंदिर नहीं था तो जो मध्यगेह भट्ट और वेदवती थी, वो दोनों यहाँ पर आया करते थे पूजा करने के लिए, प्रजक क्षेत्र से, जहाँ हम कल जाएंगे 6 किलोमीटर यहाँ से दूर, वहाँ ये स्पेशल उडुपी आते थे दर्शन करने के लिए। उडुपी का मतलब है, उडु मतलब चंद्रमा, और पी का मतलब है तपस्या, यहाँ पे चंद्रमा ने तपस्या करी है, तो इसीलिए इसको चंद्रमौली मंदिर, हम अगला जाएंगे, चंद्रमौली मंदिर उडुपी, जहाँ पर चंद्रमा ने तपस्या की है। तो यहाँ अनंतेश्वर भगवान का दर्शन करने से कहते सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो उनके घर कोई बच्चे नहीं थे, और जो होते थे वो मर जाते थे, तो इसीलिए फिर वो यहाँ पर आए और उन्होंने कहा, हे अनंत, हे भगवान शिव, आप क्या करें, हमारे बच्चे गर्भ की रक्षा करें, हमें एक पुत्र प्रदान करें। तो एक बार वो यहाँ पर जब दर्शन करने आए, तो एक व्यक्ति खंभे पे चढ़ गया ऊंचे पे, और जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुम्हारी गर्भ में जो है वो वायु का अवतार है, हनुमान है, तुम्हारी गर्भ में जो है वो भीमसेन है। इस तरह जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो उनकी गर्भ से जब प्रकट हुए बाद में, और उनका नाम रखा गया वासुदेव। वासुदेव बचपन में ही पैदा हुए, तो माँ की गोदी में दिए गए, इतने भारी थे, इतने शक्तिशाली थे, माँ थक गई, दूध पिलाने की जगह उनको जमीन पर रख दिया, और अपनी एक जो उनकी बेटी थी उससे बोला कि इनका ध्यान रखना, अभी अन्न प्राशन नहीं हुआ, कुछ नहीं खाया, दूध पीते हैं सिर्फ, और दूध भी कितना पीते जाते अंत ही नहीं होता है। तो एक गौशाला में रखा गया, जैसे यहाँ गौशाला का सिस्टम है, तो गौशाला के अंदर क्या हुआ कि जब गौशाला में रखा था, तो गौशाला के अंदर नीचे लिटा रखा है वासुदेव को, और ऊपर से एक चना वसुदेव के मुंह में गिरा, इतनी जोर जोर से रो रहे थे, लड़की भाग के गई उनकी माँ को बुलाने के लिए। वो माँ को बुलाने गई, तो माँ को बुलाने गई, मुंह में एक चना गिर गया, एक चना गिरा, तो वो सब लड़की सोचने लगी, हरे कृष्णा, आइए आइए प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तो सोचने लगी उनकी बहन की, है ना, ये क्या हो गया, ये वसुदेव रोए जा रहा है। तो एक चना गिरा था, और बोरियां लगी थी एक के ऊपर एक, तो एक के ऊपर एक वो चना मुंह में गिरने लगा। बताते हैं कि वो पूरी एक बोरी जो थी, वो 100 किलो की बोरी, पूरी की पूरी अकेले, जो कि गाय के खाने के लिए चना, मोटा चना था, वो अकेले वासुदेव जी खा गए, और उनका अन्न प्राशन हुआ है गाय के चने से, चने के दाने, सोचिए, वो भी पूरी एक बोरी खा गए। इतने शक्तिशाली वसुदेव जो थे, जब बड़े हुए तब भी उनकी भूख इतनी ज्यादा थी, किसी के भी घर जाते थे माधवाचार्य तो 3000 केले कम से कम खाया करते थे एक बार में, और 1000 लीटर दूध पिया करते थे, वायु अवतार। लेकिन जब देखा कि डिसाइपल्स के अंदर थोड़ा सा भाव आ रहा है कि अगली बार से सन्यासी को बुलाएंगे नहीं, तो माधवाचार्य क्योंकि वायु अवतार थे, तो उन्होंने सभी डिसाइपल्स के घर पे जितना खाते थे उससे अधिक उनके घर में प्रदान करते थे। तो ये जो माधवाचार्य थे, इनका सबसे प्रिय ग्रंथ था ऐत्रेय उपनिषद, या फिर तैत्रेय उपनिषद भी कहते हैं, ऐत्रेय उपनिषद भी। तो ये उपनिषद था तैत्रेय उपनिषद, इसमें विशिष्ट अद्वैतवाद का खंडन करते हुए द्वैतवाद की स्थापना करी। इसीलिए माधवाचार्य जी हमेशा दो उंगली उठा के रखते हैं, कि वी एंड कृष्णा आर टू, वी आर नॉट इक्वल. अदरवाइज शंकराचार्य सेज वन, वी आर वन, एंड माधवाचार्य सेज वी आर टू, हम दो हैं. इसलिए हमेशा उनके विग्रह में दो हैं. गौतम बुद्ध कहते हैं एवरीथिंग इज जीरो, तो इसलिए उनकी मूर्ति ऐसे है ना, शंकराचार्य की ऐसे, और वो कहते हैं वी आर टू. और महाप्रभु आए, महाप्रभु कहते हैं हम एक भी हैं और हम दो भी हैं, इसलिए वो दोनों हाथ ऊपर कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो तैतृय उपनिषद के प्रति इतना उनका प्रेम था माधवाचार्य जी का, और बचपन में ही उनको दिव्य शक्ति प्राप्त हुई थी. जहां भी चलते थे लोग उनकी चरण धूली लेना चाहते थे. एक बार एक राक्षस यहाँ पर प्राजक क्षेत्र से आते वक्त बहुत सारे राक्षस आदि थे, यक्ष राक्षस आ गया, और वो कहता है कि मुझे इस बच्चे की चरण धूली चाहिए, वरना मैं जिसके शरीर में आया हूँ उसको नष्ट कर दूंगा मार मार के. उसको जमीन पे मारने लगा, अपना सर शरीर और जमीन पिलर से टकराने लगा. तो उनकी पिताजी बोलते मध्य गया भट, अरे मैं कैसे अपने वासुदेव को तुम्हें दे दूं, तुम भूत प्रेत हो. उनकी माँ भी देने को तैयार नहीं थी, बाकी सभी भक्त मिलके फिर बोले कि दे दीजिए वरना ये व्यक्ति को मार डालेगा. तब उनकी चरण धूली निकाल के उनके पैर स्पर्श कराए गए, तो तुरंत सबने देखा कि उनके शरीर से वो यक्ष निकल करके चला गया, और वसुदेव जी की कृपा से वो व्यक्ति मुक्त हो गया. तो उस व्यक्ति ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे शरीर पर जो एक भूत हावी था वो भी माधवाचार्य की चरण धूली से समाप्त हो गया. जैसे माधवाचार्य इसी स्थान पर अपने डिसाइपल्स को तैतृय उपनिषद का व्याख्यान कर रहे थे, जब उन्होंने सभी देवी देवता उनके व्याख्यान से इतने अति प्रसन्न हुए, पुष्प वृष्टि करने लगे, फूलों की इतनी वृष्टि हुई कि पूरा शरीर उनका फूलों से ढक गया. तो डिसाइपल्स बोले कि जैसे होता है ना अभिषेक में फूल हटाओ फिर दर्शन करो, फूल हटाए गए तो देखा कि नीचे से माधवाचार्य डिसअपियर हो गए, वायुदेव वापस वायु में मर्ज हो गए. तो इसी तरह से ये स्थान अनंतेश्वर मंदिर बहुत प्रचलित बहुत प्रसिद्ध है, जिसकी पूजा मध्यगेह भट्ट वेदवती ने की. माधवाचार्य जी का बड़ा प्रेम था इस मंदिर में अनंत का, और यहीं पर उनका उन्होंने अपना डिसअपियरेंस यहाँ से अप्रकट लीला करी है. तो इस स्थान पर आकर के हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार से निर्विशेषवादियों का खंडन किया, हम भी प्रचार करें और चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में सहयोग करें, प्रचार कार्य करें, और हमारे हृदय में भी जैसे ग्रंथों के प्रति माधवाचार्य जी की भावना है वैसी भावना हमारी है सभी भागवत पुराण उपनिषद आदियों के प्रति. तो यहाँ पर हम प्राप्त कर सकते हैं वो कृपा जो माधवाचार्य जी के डिसाइपल्स को मिली है. तो हम भी माधवाचार्य की क्योंकि परंपरा में है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, तो माधव संप्रदाय में है, माधवाचार्य जी की कृपा से हम यहाँ हैं, तो उनका दर्शन होता है इसी में परिक्रमा से, खिड़की से दर्शन कर सकते हैं जिस स्थान से उन्होंने बच्चों का नाम रखते है ना जैसे कृष्णा गोपाल, तो ऐसे नाम रखा था उनके माता पिता ने, क्योंकि वो भक्त थे ना अनंत भगवान के. अनंत भगवान के भक्त थे इसीलिए वसुदेव रखा था. बाद में जब उनका उनके गुरु थे उनका नाम था अच्युत प्रेक्ष, तो अच्युत प्रेक्ष जो थे उन्होंने उनको ज्ञान दिया था नाम पूर्ण प्रज्ञा, पूर्ण प्रज्ञा. फिर बाद में जाकर अनंत तीर्थ बनते हैं, और अनंत तीर्थ के बाद काफी वर्ष बाद जाकर के वो मध्वाचार्य के नाम से प्रचलित होते हैं, है ना. तो ये जो मध्वाचार्य है इनके जो उडुपी कृष्ण भगवान है ये रुक्मणी जी के द्वारा पूज्य विग्रह हैं. ये रुक्मणी जी जो थी वो अपने एक बार देवकी और रुक्मणी ने भगवान से बोला कि भगवान द्वारकाधीश आप तो इतने ऐसे राजसी वेश में रहते हैं, क्या आपका कभी बाल रूप का दर्शन हो सकता है. तो रुक्मणी और देवकी के इस प्रार्थना पर भगवान कृष्ण ने कहा हाँ मैं अपना बाल रूप का दर्शन करा सकता हूँ, जो कि यशोदा मैया को प्राप्त हुआ है. लेकिन देवकी को और रुक्मणी को देखने को नहीं मिला. तो कृष्ण ने अपने लड्डू गोपाल विग्रह दिखाए और एक दामोदर लीला वाला विग्रह दिखाया जिसमें हाथ में रस्सी है, मटकी फोड़ी है और मथनी हाथ में है. तो जब ये रूप दिखाया तो रुक्मणी की आंखों में आंसू आ गए, बोली कितना सुंदर आपका विग्रह है प्रभु, इसको आप ऐसे ही रखिए, हम फोटो क्लिक करना चाहते हैं. लेकिन फोटो तो थे नहीं, स्मार्टफोन तो थे नहीं. तो फिर नारद जी को बुलाया गया, नारद जी ने विश्वकर्मा को बुलाया और फिर विग्रह बनाया गया. परंतु जब द्वापर युग समाप्त हुआ, सारे यदुवंशी भगवत धाम चले गए, तो फिर सबने कहा अभी क्या करें, तो भगवान के उन विग्रहों का जो कि रुक्मणी जी के द्वारा पूजित होते थे, उन सभी विग्रहों को गोपी तलाव में लाके मर्ज किया गया, डाल दिया गया। तो ये जो गोपी तलाव है उसकी भी बड़ी महिमा, जो हम गोपी चंदन लगाते हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारका में। तो ये जो गोपी तलाव था ये क्या है, एक बार भगवान श्री कृष्ण के सिर में दर्द हो रहा था, तो भगवान ने कहा कि मुझे अपने भक्तों की चरण रज ही है जो कि मेरे सिर का दर्द ठीक कर सकती है। तो सभी जगह गए नारद जी, ऊपर के लोकों में, नीचे के लोकों में, 16,108 रानियों से बोला, सबने कहा, शिव जी बोलते हैं, वरुण बोलते हैं कि भाई हम अगर अपनी चरण धूलि कृष्ण को देंगे तो हमें पाप नहीं लगेगा, तो हम नरक नहीं जाना चाहते हैं। तो फिर भगवान कृष्ण के पास नारद जी जाके कहते हैं, प्रभु आपको कोई धूलि देने को तैयार नहीं है। कहा ठीक है, आप ना एक काम करो, वृंदावन चले जाओ, गोपी भाव सेवा जो है ना भक्तों की वो सबसे उत्कृष्ट है, माधुर्य भाव, आप उनसे जाके मांगो वो दे देंगे। गोपियों को जाके मांगा तो गोपियों ने कहा, इतनी देर क्यों लगाई कि कृष्ण के सिर में दर्द है, ले जाओ। तो फिर गोपियों को प्रेम पाश में बांधकर सभी गोपियों को द्वारका लाया गया, सबके पैरों का अभिषेक किया गया, उनके चरणों की जो रज थी उसी से गोपी तलाव बन गया, और गोपी तलाव का जो चंदन है वो कृष्ण ने अपने सिर पे जब लगाया तो उससे क्या हुआ, उनका सिर का दर्द ठीक, वैसे तो ठीक ही था, लेकिन वो लीला कर रहे थे कि गोपियों की चरण रज वो है जो मेरे मस्तक पे विराजमान होती है, और फिर हम भी उसको लगाते हैं तो हमें कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, ये गोपियों की चरण रज है। तो उसके अंदर अर्जुन को ये सेवा दी गई कि सभी रानियों को ले जाकर कहाँ ले जाओ, वृंदावन, और वृंदावन ले जाओ और क्या करो साथ में कि ये जितने भी विग्रह हैं इनको गोपी तलाव में डाल। तो गोपी तलाव में डाल दिया गया। तो एक व्यापारी था जो कि द्वारका से आ रहा था, खूब सारा सोना चांदी लेके और साथ में गोपी चंदन, तो गोपी चंदन लेके आ रहे थे, उनकी नाव फंस गई यहीं पर मालपे बीच पे। तो माधवाचार्य जी ने अपना लाल रंग का वस्त्र दिखा करके उसको डायरेक्शन दिया, और क्यों खुद भी वायु थे तो साइक्लोन को रोक दिया, वायु कंट्रोल कर लिया, और बोले वायु रुक जाओ, बोट को कंट्रोल कर लिया। और फिर उन्होंने कहा हम कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, तो उन्होंने गिफ्ट दिया गोपी चंदन। गोपी चंदन को जैसे ही हाथ में उठाया उधर किनारा टूट गया, उसमें से बलराम जी प्रकट हुए, उनका नाम पड़ा भंड भांडेश्वर भगवान। तो वो मालपे बीच में भगवान का बलराम जी का ड्यूटी था। और फिर जब वो गोपी चंदन था उसको लेके आए, तो यहाँ पर जो अंदर दर्शन किया हमने वो ओडीपी के अंदर दर्शन करने में, एक है माधव सरोवर, माधव सरोवर में उन्होंने तिलक लगाने के लिए जैसे उसको भिगोया तो वो फूट गया और उसके अंदर से ओडीपी कृष्ण भगवान निकले जो कि रुक्मणी के द्वारा पूजित थे, वही भगवान यहाँ पर विराजमान है। तो ऐसे ओडीपी कृष्ण भगवान की जय, ईश्वर भगवान की जय, ताई निताई गौर हरि प्रेम।